आपका विशेष स्वागत है। 3 महीने के बाद आए हैं। ठीक है सर, प्रभु जी ठीक है। हरे कृष्ण। तो हम लोग पिछले 3-4 हफ्तों से जो बात कर रहे थे उस शिक्षाष्टकम के श्लोक्स पर चर्चा कर रहे थे, तो उसमें लास्ट टाइम कोई मुझे कह रहा था नेचुरल पैथी, अभी थोड़ा सा बताइएगा, आप लोगों ने क्रॉस करी थी वो? ठीक है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल जो भी बातें वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, तो शुरू वहाँ से करते हैं, फिर उसको एक उसी पे चर्चा करते हुए थोड़ा सा हेल्थ के विषय पे ले लेते हैं। एक्चुअली जो हम लोगों ने क्लासेस कराई थी, इसका उद्देश्य ये था कि जो भक्त लोगों को समस्याएं चल रही हैं, शारीरिक प्रॉब्लम चल रही हैं, तो इससे कुछ लोगों को बेनिफिट हुआ था। जैसे हमारे मंदिर में हर्षित केशव प्रभु जी हैं, जो अभी ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था उनका, तो उनको जो है मेडिसिन रेगुलर चल रही थी उसकी 1-1.5 साल से, और वो चलनी पड़ती है, खानी पड़ती है, और ऊपर से 20 साल से उनको शुगर का प्रॉब्लम भी था, बीपी ऊपर लोअर को, तो फिर वो किसी के संपर्क में आए और उन्होंने थोड़ा सा नेचुरोपैथी करना शुरू किया। तो उनको फ़ायदा ये हुआ कि 2-3 महीने में उनकी दवाइयाँ छूट गई सारी और शुगर भी मेंटेन हो गया आराम से। तो हम लोगों को जब पता चला तो हमने कहा ठीक है, आप इतनी तपस्या कर सकते हो कि खाने पीने में बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमने कहा आपकी उम्र हो गई है, आप तो कर सकते हैं, थोड़ा सा मजाक कर लिया, वैसे कर लिया। लेकिन आश्चर्यचकित तो थे हम कि भाई किसी के हार्ट की और बीपी की दवाइयाँ बंद हो जाएं और वो सब कंट्रोल हो जाए। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि मुझे खुद कोई समस्या हो गई, मेरा गला जो है बहुत ख़राब हो गया और सर भी भारी रहने लगा, खांसी शुरू हो गई, तो मैंने होम्योपैथिक दवाई ली 3 दिन तक, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। और फिर मैंने आयुर्वेदिक दवाई भी ली, तो आयुर्वेदिक से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, समझ नहीं आ रहा था क्या कारण। फिर मुझे लगा मेरे कहीं कहीं प्रोग्राम होते हैं, कुछ ना कुछ होता है, अचानक कोई प्रोग्राम सर पे आ गया, कहीं मैं बोलना पड़ा तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग इतना पैसा लगा के इतना बड़ा प्रोग्राम वो करते हैं और फिर मुझसे कई बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप नहीं करना है वो, और मैं बोलूँ जी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा गला ख़राब है, बात भी नहीं कर पा रहा था। तो फिर मुझे लगा कि अब मैं एलोपैथी की शरण में जाता हूँ, सुना तो है कि एलोपैथी इतना अच्छा नहीं होता, बट फिर भी कर लेता हूँ। तो मैंने 5 दिन का हैवी कोर्स करा उसका और 20% फर्क पड़ा खाली। तो मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, लगातार 10-12 दिन हो गए एक डिजीज के साथ। फिर मैंने जो है एक भक्त से पूछा जो थोड़ा सा प्रिकॉशंस ले रहा था, तो उसने कहा प्रभु जी आप अगर नेचुरोपैथी करेंगे तो शायद आपको फ़ायदा हो जाएगा। मैंने कहा वो क्या है? तो उन्होंने बोला आपको कुछ नहीं करना, सर्दी खांसी जुकाम इत्यादि में आप बस भूखे रह लो 2 दिन, कुछ खाइए मत और देखिएगा आप ठीक हो जाओगे। तो मैंने कहा 3 चीज़ें ऑलरेडी कर चुका हूँ, 4थी चीज़ इसको भी कर लेता हूँ। तो मैं पहले दिन पानी पे रहा, एकादशी का दिन था, अब एकादशी तो हमें तपस्या करनी चाहिए, तो मैं एकादशी में जल में रहा। जल में भी मैंने नारियल पानी भी लिया, दो या तीन नारियल पानी पूरे दिन में लिए, क्योंकि नारियल पानी पीने से एनर्जी भी मिलती है और पूरा दिन चल जाता, भूख भी नहीं लगती। फिर थोड़ा गुड़ मिलाकर एक बारी नींबू पानी भी लिया उसके साथ। फिर मैंने जो है एक दिन हो गया, फिर पारण कार के टाइम मैंने थोड़ा सा 1-2 चावल के दाने खा लिए। फिर मैंने कहा कंटिन्यू करता हूँ, अभी एनर्जी है, दूसरा दिन भी करता हूँ। तो दूसरा दिन भी जल पर रहा और दूसरे दिन के एंड में मेरी खांसी जो है 50-60% ठीक हो चुकी थी और गला भी जो है ठीक हो चुका था लगभग 50%। तो मुझे बड़ा प्रभावशाली लगा, मैंने कहा तो काफ़ी काम की चीज़ है। अगले दिन मैंने फिर एकदम हैवी फूड नहीं लिया, सैलेड और बॉइल्ड वेजिटेबल्स ली, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि तीसरा दिन भी ऑलमोस्ट फास्टिंग टाइप हो गया और चौथे दिन से मैंने अपना मील लेना शुरू कर दिया, तो वो 80-90% ठीक हो चुका था बिना दवाई के। तो मैं पर आश्चर्यचकित था और उस मेथड से बड़ा इम्प्रेस भी था। तो फिर मुझे लगा कि इसको करना चाहिए। तो पंजाबी बाग में तो कुछ लोग कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, मुझे लगा वहाँ होना हो यहाँ करवा लेते हैं कोर्स को। तो फिर हमने एक दिन मीटिंग में बैठे थे तो दो तीन लोगों ने शुगर की समस्या बताई। फिर मुझे लगा, मैंने कहा हम लोग को छोटा सा कोर्स करा देते हैं दो दिन का, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो जिनके लिए कराया वो नहीं आ पाए किसी कारण, बिजी होने के कारण। फिर हमने दो चार लोगों को मैसेज किए, हमने कहा भाई जो आ सकते हैं वो आइए। फिर उन्होंने भी कुछ मैसेज किए थे तो उनके लोग भी आते थे। तो उसका लाभ ये पहुंचा कि उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से चीज़ें रखी। और भक्ति विनोद ठाकुर जी जो थे अपने जीवन में वो सिद्धांत बताते थे, स्वास्थ्य साधना और साध्य। वो कहते थे कि स्वास्थ्य रहना चाहिए, व्यक्ति का बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहिए, तभी वो अच्छी साधना कर पाएगा और उसी के द्वारा फिर वो साध्य को प्राप्त कर पाएगा जो जीवन का लक्ष्य है। लेकिन जिस तरह के वातावरण में हम लोग रहते हैं, जैसे खान पीन हमारे आसपास है, जैसा लिविंग स्टाइल है, शहरों का जीवन इतना व्यस्त, इतना डिस्टर्बेंस वाला, तो ये सब हमारे को कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तनाव देते हैं, परेशान करते हैं और बीमारियों का रूप के रूप से हमको मिलती हैं। अभी मैं कुछ दिन के लिए, तीन चार दिन के लिए एक तीर्थ स्थान पर गया था, ठंडा तीर्थ स्थान था बद्रीनाथ। तो वहाँ पर हवा पानी सब कुछ बड़ा साफ सुथरा था और जो भी भोजन ले रहे थे वो बहुत आसानी से पच रहा था। तो वातावरण का बहुत बड़ा असर होता है शरीर पर। लेकिन हम उस गांव की ज़िंदगी को छोड़कर, ऐसी जगहों को छोड़कर हम लोग शहरों में अब, और शहरों का जो जीवन है फुल ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन इतना है कि आप अगर सिगरेट नहीं भी पीते हैं तो फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड आपके अंदर जा रहा है सुबह से शाम तक। तो हवा एकदम ख़राब मिलती है और जितने भी तरह का भोजन हम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केमिकल्स का है, कहीं इंजेक्शन हैं, कहीं एक्स्ट्रा शुगर डाली गई है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है। तो या लोगों को जल्दी से जल्दी पैसा बनाना है तो कौन इंतज़ार करे, तुरंत इंजेक्शन लगाते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं और मार्केट में सुंदर रूप से पॉलिश कर केमिकल्स लगाकर अवेलेबल है सब कुछ। तो और दूसरी बात, एक कारण ये भी है कि शहरों में रहने वाले लोग कहीं ना कहीं हीन भावना से या धन आने की वजह से फिर एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने की जो कामना रहती है हृदय में वो भी पूरा करना चाहते हैं। अब एक अच्छा जीवन जीना तो नेचुरली व्यक्ति सोचेगा कि खाना पीना मेरा अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए भक्त बन गया कोई व्यक्ति, तो भक्त के बाद उसको मालूम है, ठीक है मुझे इतना कुछ नहीं पढ़ना, यहाँ नहीं खाना, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, पब्स में नहीं जाना, सिगरेट नहीं पीना, इंटॉक्सिकेशन नहीं लेनी, तो उसको लगता फिर क्या करें, फिर बची चीज़ें क्या हैं भक्तों के पास खाने के लिए पीने के लिए। वो हर तरह के फल, अच्छे दिखने वाले फल एक, दूसरे वो फल जो बेशक सीजनल नहीं है, महंगे हैं और सर्दी में या ऐसे मौसम में अवेलेबल होते हैं जो उस समय मौसम नहीं, ऐसे ही वेजिटेबल्स, ऐसे ही घी और तेल के उत्पाद। तो हम क्या करते हैं उनको लेकर इस्तेमाल करते हैं, जो सबसे महंगी है हम दिखाना, क्योंकि हमारे पास पैसा है, अब गलत चीज़ों में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो कहने कहीं तो करना है। और फिर इसी से पता चलेगा कि हम अच्छे खाने वाले हैं, अच्छा खाते पीते घर के। अब खाते पीते घर के दर्शाने के लिए हमें वो सब चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती है, खानी पड़ती हैं, है कि नहीं। तो हम लोग उस समाज, उस मार्केट से वो सब लेकर आते हैं और फिर हमारा लाइफस्टाइल रेगुलेटिव नहीं है। जैसे रेगुलेटेड इसलिए नहीं क्योंकि भगवद गीता में जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं युक्त आहार विहारस्य है ना, युक्त चेष्टा तो करो, अर्थात कि हर चीज़ क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। नींद कितनी लेनी है ना, भोजन कब खाना है, कहाँ खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होता था। लेकिन हम जिस तरह की शहर की लाइफ जी रहे हैं उसमें बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें वो दिखावे वाला जीवन भी जीना है, या कहने की मानसिकता है कि सब कुछ है और कुछ खाए ना तो लोग बोलेंगे देखो तुमने खाया नहीं, इन्जॉय नहीं किया। लेकिन बताते हैं कि हम लोग फिर ये भूल जाते हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। कई बार वो उन्होंने एग्जांपल भी दिए थे कि जैसे एक छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को कुछ भी खिलाओ तो अगर उसके शरीर को सूट नहीं कर रहा तो वो इमीडिएटली वॉमिट कर देगा अगर दूध पिला रहे हैं, या उसका नाक बहता रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। क्योंकि शरीर में अगर कोई गंदगी जा रही है या कुछ चीज़ ठीक नहीं है, ढंग से पाचन नहीं हो रहा, तो गंदगी के रूप में बाहर निकलता है, इससे बच्चों की नाक बहती रहती है इसलिए। लेकिन आजकल तो मॉडर्न ज़माना है, तो मॉडर्न ज़माने में अच्छा नहीं लगता कि बच्चे की नाक बहे बार बार, तो पेरेंट्स तुरंत एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं जो बेशक अच्छी फीस भी लेता हो, ताकि लोग ये बोलें देखो हम लोग लाइनों में नहीं खड़े होते हैं, हम इधर नहीं जाते हैं उधर नहीं जाते, हम तो बेस्ट वाले पे जाते हैं, और फिर उसको एलोपैथिक दवाइयाँ देते हैं। तो अभी का जो करंट जीवन रहन सहन है हमारा वो डिस्टर्ब है। लेकिन भक्तिवीर ठाकुर जी कहते थे स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो निश्चित रूप से हम लोग सही मन से, सही शरीर से, सही सोच पाएंगे और सही कर पाएंगे। पर करना क्या है एक भक्त को, उसे भक्ति करनी है प्लस अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसे पूरा करना है। हमारा जीवन जिस प्रकार शुरू होता है हमें भी मालूम है कि वो हर समय ऐसा नहीं रहता, उसको ऐसा होना पड़ता है और ऐसा होना पड़ता है, यू टर्न आता है लाइफ। लेकिन जो मन में इच्छाएं हैं, भोग की प्रवृत्ति है, या जो एनर्जी या शक्ति है वो हर समय एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि हमारी आदतें गंदी पड़ चुकी होती हैं। इसलिए हम लोग 15 साल 20 साल 25 साल की उम्र में जो करते थे, 30 साल की उम्र तक जो करते थे, हमें लगता है कि यही सब कुछ ठीक था और आने वाले समय में भी हमारा शरीर हमारा मन उसी तरह काम करे। लेकिन एक समय ऐसा आता है उम्र का जब वो मुश्किलें पैदा करना शुरू करती हैं वही चीज़ें करने पर, और 5-10 साल तो हमारे को आश्चर्यचकित होके निकल जाते हैं किस रूप में कि ये चीज़ मैं इतना खाता था आजकल मेरे से पचाया नहीं जा रहा। डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो यही बोलते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसको खाने में लेकिन आजकल ऐसा क्यों हो रहा समझ नहीं आ रहा, पहले तो मैं ठीक ढंग से चलता था दौड़ता सब कुछ करता था लेकिन अब पता नहीं क्यों घुटना जो है समस्या देना शुरू कर रहा है, अब छोटी छोटी बात पर जो है कमर की समस्या शुरू हो जाती है, समझ रहे। पहले तो मैं ये सब खा लेता था कंकड़ पत्थर लोहा हजम, अब तो मैं ये नहीं पचा पा रहा। तो वो कुछ ना कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ देकर हमें कोशिश करते हैं कि चलो उस बीमारी को हटाओ और कोशिश करो थोड़ी दवाइयाँ खा लो। तो फिर कुछ व्यक्ति तो कुछ समय तक दवाइयों पर जीना शुरू करता है कि चलो वो सब खाने के लिए कुछ दवाइयाँ भी हाथ में खानी पड़े लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो कहाँ समस्या आ रही है कि हम लोग जिस तरह का युवा अवस्था में शरीर था जीवन था अब वो वैसा नहीं रहता धीरे धीरे, लेकिन हम काम उससे वैसे लेना चाहते हैं तो वहाँ समस्या आती है। तो इसलिए भक्तों को क्या ध्यान देना पड़ेगा, इस पूरे चीज़ को समझना इसलिए पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी साधना और साध्य जो डिपेंड करता है वो स्वास्थ्य पे भी करता है। हम लोग जैसे बाहर के लोगों को बताते हैं कि आप 24 घंटे शरीर को दे रहे हैं लेकिन कुछ आत्मा के लिए दीजिए, वैसे ही हम जो शरीर के लिए दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हमें समस्याएं हो रही हैं। तो अगर हम सावधानीपूर्वक इस शरीर की देखभाल करेंगे, वैष्णव एटिकेट में हम पढ़ते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति को इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि परमात्मा उसके हृदय में, उसका हृदय जो है शुद्ध है और वो शरीर मंदिर के समान है, इसलिए हम दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। जब सनातन गोस्वामी जी अपने शरीर का त्याग करना चाह रहे थे अपने को निकृष्ट समझकर या उनमें कुछ बीमारी इत्यादि लग गई थी तो महाप्रभु ने उनको रोका, उन्होंने कहा कि तुम आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे तो ये बहुत बड़ा पाप था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की कि तुम इस शरीर का त्याग कर दो। उसने कहा ये खराब हो गया जर्जर शुरू हो गया, मैं त्यागना चाहता हूँ। सनातन गोस्वामी कहते नहीं, इसका मतलब तुम ये समझते हो कि शरीर तुम्हारा है क्योंकि अब तुम कृष्ण की शरण में आ चुके हो, तो ये शरीर किसका है, कृष्ण का है, और इससे किसकी सेवा करनी है, कृष्ण की सेवा करनी है। तो कई बारी भक्त लोग शरीर को या जिस प्रकार इन सबको सोचते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और बाकी समय जब शरीर को ठीक प्रकार से नहीं रखते तो शरीर में होने वाली समस्याओं के आधार पर बीमारी होने के कारण हम वो जो टाइम है जो भक्ति में या सेवा में लगा सकते थे, बीमार होने पर या दुखी रहने पर क्या करते हैं, वो डॉक्टर्स के पास जाने में या उसके जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको फॉलो करने में, उसके डूज और डोंट जो बताते हैं उसमें काफ़ी समय लगा देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है और बुद्धि नहीं लगाई तो भोजन पर या उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, तो ये हमारे कहने का नुकसान करता है। तो अगर ये शरीर कृष्ण का है या शरीर गुरु का है तो इसका एक एक अंग भी भगवान की ही सेवा में इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरा, जब हम बीमार पड़ते हैं तो समस्या क्या होती है, उस समय हम पर माया का बहुत बड़ा अटैक होता है। कैसे कि भक्त लोग सोचते हैं कि मेरे को किसी ने पूछा नहीं, मेरा हालचाल किसी ने नहीं पूछा, मैं तो इतनी सेवा करता था, मैं तो उसकी बीमारी का हालचाल पूछा था, उसने क्यों नहीं पूछा, वास्तव में सब बेकार के लोग हैं, मतलब भी हैं सारे लोग, है ना, इस प्रकार की भावना बनने लगती है मन, वैष्णवों के प्रति अपराध शुरू हो जाते हैं, इनसिक्योरिटी फील करता व्यक्ति अगर वो बीमारी की अवस्था में होता है। और बीमारी की अवस्था में सबसे बड़ी क्या बात क्या है, वो अकेला होता है, अकेले के समय वो शरीर से नहीं चल पा रहा लेकिन उसका मन हर समय चल रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहा है, तो इस प्रकार उसकी मानसिक चिंताएं बढ़ने लगती हैं, इनसिक्योरिटी फील करता है, और कहीं ना कहीं गुरु अथॉरिटी भगवान के प्रति उसके अंदर कैसी भावना आती है, हीन भावना से शुरू हो जाती है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है उसकी, क्यों, क्योंकि बीमार है, उसको देखते कि मैंने कौन सा पाप किया, मैं तो सबके साथ अच्छा कर रहा था और ये बीमारियां मुझको क्यों आ रही है, तो कहीं ना कहीं फील करता है सबका। तो इसलिए बीमार होना ट्रेंड नहीं है, इसलिए शरीर के विषय में ना सोचना ये एक नुकसान वाली बात है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, स्वास्थ्य के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। बीमारी के समय पर हम खुद भी सेवा नहीं कर पाएंगे और ना दूसरों की मदद कर पाएंगे, तो इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर जी कहते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दीजिए। ग्रंथ साहिब में या भगवद गीता में इसलिए कई बार मिलता है कि भगवान स्वास्थ्य के विषय में बोल रहे हैं, अन्य पुराणों में आयुर्वेद तो शास्त्र है जिसमें शरीर को किस प्रकार रखना चाहिए, किस पर डील करना चाहिए, सब विषय में दिया है। वो बात अलग है कि जिस प्रकार हम लोग कई बार कृष्ण भक्ति में आते हैं, जैसे हमें पता चलता है कृष्ण सुप्रीम है तो सबसे पहले हम लोग सब कुछ सारी चीज़ें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, ये बेकार है, ये बेकार है, मैं तो कृष्ण से डायरेक्ट संबंध है, उसी तरह स्वास्थ्य के उसमें भी ये आता है, जैसे लगता है कि हाँ अब तो बस ये कर लो, ये खा लो, ये पी लो, बाकी सबको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो हमारा नुकसान करती है। तो जो सीखने वाली बात है वो ये कि किस प्रकार हम अपने स्वास्थ्य को या इन शरीर को ठीक रखें जिससे कि हम इसे सही काम ले सकें, क्योंकि यह कृष्ण की या गुरु की प्रॉपर्टी है। श्रील प्रभुपाद जी कितने ही बिजी रहते थे, रात को 12 बजे उठ जाते थे लेकिन अपनी पुस्तकों का लेखन करते थे, लोगों के लेटर्स का जवाब देते थे, 8-10 हज़ार लेटर लिखे उन्होंने, लेकिन साथ ही साथ अपनी मॉर्निंग वॉक नहीं छोड़ते थे और मसाज लेना नहीं छोड़ते थे, दो टाइम या सब सारे टाइम से हर चीज़ निकालते थे समय। हिजरत गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनके पास सेवाओं की कमी नहीं है, देश में या विदेश में कहीं भी हों तो सुबह 4 बजे से ही उनकी ज़िंदगी शुरू होती है, पहले अर्चनम करेंगे, ऑल्टर में जाएंगे, जप करेंगे, गायत्री करेंगे, फिर वॉक भी करेंगे, वॉक में बात नहीं करते, फिर डीटी वर्शिप करेंगे, फिर गुरु पूजा करेंगे 1 घंटे की, कीर्तन, और फिर लेक्चर देंगे। तो कहने का मतलब क्या है, वो इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहे हैं और इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, इतने सारे लोगों के साथ इंट्रैक्शन करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक अपनी 1 घंटे की वॉक करते हैं, क्या खाना है, कब खाना है, कैसा खाना है, सारी चीज़ें मेंटेन। तो हम देख सकते हैं कि हमारे आचार्य जन भी ध्यान रखते हैं इन सब चीज़ों, तो हम लोगों को भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। सही स्वास्थ्य से हम सही मन से सही शरीर से हम लोग ज्यादा आउटपुट दे पाएंगे, हम ज्यादा सेवाएं कर पाएंगे, हम ज्यादा प्रोजेक्ट्स को कर पाएंगे। नहीं तो हम लोग बीमार पड़कर अपनी सेवा कराते रह जाएंगे, प्रभु जी ये कर दो, प्रभु जी ये ठीक नहीं है, लोगों की सिंपथी लेते रहेंगे अननेसेसरी, मतलब दूसरों को अपनी सेवा में लगा रखें। तो क्या होना चाहिए, चलो मैं इसमें अब फिर वहां से शुरू करता हूँ जहां से उन्होंने कोर्सेज कराए थे, उसके बाद फिर हम वापस स्ट्रैक पे आ जाएंगे। उन लेक्चर्स में जो हमने सुना उसको हम लोग नटशेल में बता रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, कि शरीर में जो बताते हैं कि हम कुछ भी खाते हैं तो जो खाना है शरीर के अंदर जाता है और एनर्जी देता है, साथ ही साथ जो एनर्जी या विटामिन्स जो हैं वो जहाँ अपनी जगह नहीं लेते तो फिर वो स्टूल के रूप में बाहर निकलते हैं। तो बताते हैं कि जो भी हम खाते हैं, जो भी शरीर के अंदर टॉक्सिन बनते हैं, गंदगी बनती है, वो चार द्वारों से बाहर निकलते हैं। तो एक मल के द्वार, यूरिन पास करना, पसीने के द्वारा और सांस के द्वारा, ये उन्होंने बताया कि चार प्रकार से बीमारियां बाहर निकलती हैं। और अगर ये बीमारियां नहीं बाहर निकल रही ठीक प्रकार से तो फिर ये बीमारियों के रूप में, ये गंदगी अगर बाहर नहीं निकल रही तो बीमारी के रूप में बाहर आती है। तो उन्होंने बताया कि नज़ला, सर्दी जुखाम, खांसी, बलगम है ना, फोड़ा फुंसी इत्यादि के दर्दों के रूप में बाहर आती है, क्योंकि चीज़ें अंदर रहेगी। अब वो जो चीज़ें अंदर हैं उसका तरीका यही है बाहर निकलने का, तो फिर इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो गंदगी अंदर इकट्ठी हो रही थी वो बाहर निकल रही है, या दस्त लग जाना। तो हम क्या करते हैं जब ऐसी स्थिति होती है हमारे साथ, हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे हम कोई भी एलोपैथिक दवाई लेकर खा लेते हैं। इवन आधे डॉक्टर बन चुके होते हैं हम कि अब तो मालूम है किस दवाई की, किस बीमारी की क्या दवाई खानी है, तुरंत दूसरों को भी सजेस्ट करते हैं। तो उसमें ये बताया कि वो जो बीमारियां बाहर निकलनी थी एलोपैथिक दवाई से या इन सब दवाइयों से, हम क्या करते हैं उन दवाइयों से उन बीमारियों को हम दबा दें। और थोड़ा सा ध्यान लगाने पर पता चला कि हाँ, जब हम वो दवाइयां खाते हैं तो बीमारी जो अंदर गंदगी है बाहर तो निकली नहीं, वो तो सप्रेस कर दिया उसको, बस दबा दिया उसको। चलो जी ठीक है, लेकिन हम ठीक हो गए, हमें तो लगा एकदम इमीडिएट इफेक्ट पड़ा है, फिर से काम धंधे में लग गए, फिर से सेवाओं में लग गए। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से वो अटैक होता है, क्योंकि अंदर अभी भी गंदगी है और भी गंदगी जमा हो रही है, और भी समस्याएं हो रही हैं, फिर वो फिर से ऐसा निकलने की कोशिश करती है, हम फिर उसको दबा देते हैं। लेकिन धीरे धीरे यही छोटी मोटी बीमारियां जो हैं, यही गंदगी, क्योंकि बाहर नहीं निकल पा रही तो बड़ी बीमारियों के रूप में काम आती, मतलब के नाम से जानी जाती, स्टोन हो जाना, आर्टरीज ब्लॉक हो जाना है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, बीपी है ना, अस्थमा, आप लोगों को मालूम होंगे क्या क्या बीमारियाँ होती हैं, दर्दें, जॉइंट पेन, बैक पेन, क्योंकि वो एनर्जी जो है, जो प्राण वायु है वो शरीर में अलग अलग जगहों पर जाकर उन सब चीज़ों को नहीं कर पा रही, उसकी एनर्जी कहीं और लग रही है। अब तो नुकसान क्या होता है कि जो गंदगी अंदर थी वो गंदगी अब अंदर ही है और वो बीमारियों के रूप में बाहर निकलना चाह रही, बट उसको सप्रेस किया जा रहा है और करते 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 वो स्टोन या ऐसे कंडेंस होकर कोई ना कोई बीमारी वेन्स में जाकर ट्यूमर्स के रूप में, स्टोन्स के रूप में कहीं ना कहीं से निकलती हैं फिर। तो एक अच्छी बात ये बताई कि ये बीमारियाँ एकदम नहीं होती, ये कुछ समय के बाद होती हैं जब लगातार हम इसको रोकने का प्रयास करते हैं। और इसी के कारण क्या होता है, लोगों के शरीर फूलने शुरू हो जाते हैं, वेट बढ़ने लगता है, लेजीनेस शुरू हो जाती है और इधर उधर के, अब लेजीनेस का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो बीमारियां लग रही हैं जो, और हम लोग सुस्त हो रहे हैं, तो शरीर हमारा मूवमेंट करना कम कर देता है, अर्थात हम स्ट्रेच नहीं करते शरीर को। तो जो आप लोगों में से किसी की कभी हड्डी टूटी, हड्डी हाथ पैर कहीं की भी, तो आप देखेंगे जब प्लास्टर होता है तो जो प्लास्टर है 21 दिन के लिए शायद लगता है मिनिमम हाथ पांव की टूट जाए तो, बट फिर भी अगर नहीं जुड़ती तो 30 दिन या थोड़ा और करते हैं। तो 30 दिन का प्लास्टर या सवा महीने का जब प्लास्टर लगता है तो हमें लगता है कि जुड़ गया है, शायद फील होता है, दर्द नहीं हो रहा, कुछ नहीं पता चल रहा। लेकिन जैसे ही प्लास्टर काटा जाता है तो क्या होता है, क्योंकि वो शरीर ने मूवमेंट बंद कर रखी थी तो टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, स्टिफनेस आ जाती है। जैसे जब मेरा हाथ में हुआ था फ्रैक्चर, तो डॉक्टर ने जब प्लास्टर बांधा तो 21 दिन के लिए था, अंदर से हाथ हिलने लगा था, तो मुझे लगा कोई दिक्कत नहीं है, दर्द नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो जब 21 दिन बाद काटा, उन्होंने बोला कि आप हाथ सीधा करोगे तो सीधा तो हो जाएगा, लेकिन उसको यूँ ट्विस्ट करोगे और यूँ करोगे तो दर्द होगा, आप वेट नहीं उठा पाओगे और बिल्कुल सीधा नहीं हो पाएगा, बहुत दर्द होगा, क्योंकि 21 दिन तक आपके हाथ में कोई मूवमेंट नहीं थी। तो जो पार्ट शरीर में मूवमेंट करना बंद कर देता है वो स्टिफ हो जाता है और टॉक्सिन्स वहाँ जम जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ नई नई प्रकार की वेन्स में दर्दें शुरू हो जाती हैं। तो मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तो हाथ को बड़ा रास्ते सा किया था मैंने, तो जैसे ही मैंने हाथ प्लास्टर खोला और जब यूँ करने की कोशिश करी तो बड़ा दर्द हुआ, और यूँ तो कर नहीं पा रहा था। तो फिर उन्होंने कहा 2-3 महीने लगेंगे इसको पूरी तरह से ठीक होने में, क्योंकि आपको फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी। फिर एक जानकार व्यक्ति था, वो हीट थेरेपी से जल्दी ठीक करता था, तो हीट थेरेपी से वो टॉक्सिन जो हैं जल्दी जल्दी मूव हुए, हाथ को ठीक किया, तो हफ्ते में ठीक हो गया। तो कहने का क्या मतलब है, जब हमारा शरीर, जब हम लेजीनेस की तरफ जाते हैं, जब बीमारियां लगती हैं, स्टिफनेस आती है, बॉडी में टॉक्सिन जमा होता है, और दर्दें शुरू हो जाती हैं अलग अलग जगहों पर। आपको लग रहा होगा आज तो क्लास डॉक्टर टाइप टाइप चल, तो हमारी समस्या क्या हो जाती है, वो जो समस्याएं अंदर थी वो अब इन रूपों में बाहर आ रही है। तो क्या करना चाहिए, जैसे उन्होंने हड्डी का भी एग्जांपल दिया था कि हड्डी टूटती है तो उसको जोड़ने के लिए ना वो फेविकोल डालता है, ना कोई इंजेक्शन डालता है, ना कुछ ऐसा कुछ करते हैं। कैसे जुड़ती है हड्डी, अपने आप जुड़ती है। तो उन्होंने बताया ये नेचर की तरफ से ही है कि शरीर के अंदर कुछ भी है वो अपने आप ठीक हो जाएगा, जैसे पशुओं में होता है कोई बीमारी भी लग जाए तो अपने आप ठीक हो जाता है। फिर दूसरा उन्होंने बताया कोई ऐसी बीमारी आ भी जाए तो, जैसे मैंने अपना एग्जांपल बताया कि मैंने कैसे ठीक किया, आराम कर और शरीर को आराम देना शुरू कर दिया, उस समय खाना बंद कर दिया, तो 2 दिन की 1.5 दिन की फास्टिंग से क्या हुआ, शरीर को आराम मिला और वो चीज़ें ठीक हो गई। तो उनका कहना है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, गंदगी शरीर में ना जमा हो तो उसका तरीका आना चाहिए। हम जो चीज़ें बाहर खाते हैं उन सब चीज़ों से, जैसे वाइटनेस किन किन चीज़ों में रहती है, खाने की चीज़ों में, आटे में, जो सारा इसका छान कर या उसको और वो कर, तो कहते हैं वो जो है मैदा बन जाता है, मैदे से बड़ी सारी चीज़ें बनती हैं, वो सब हमारी पेट में चिपक जाती है जाकर, तो वो गंदगी पैदा करती है, बीमारियाँ पैदा करती हैं, गैसेस निकलती हैं। तो वो साथ के साथ साफ होता रहना चाहिए। तो गंदगी बाहर कैसे निकले, तो उनका पहले गंदगी वाले आइटम ही बंद कर दो, जिससे, क्योंकि शरीर के अंदर जो जाम करती हैं चीज़ें, जैसे हमने बताया ये जितने भी फास्ट फूड्स हैं और जितने इस तरह की वाइट चीज़ें हैं ये नहीं खानी चाहिए, उसमें शुगर का भी उन्होंने मना किया था। जो चीनी हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं कि इसके अंदर से सब कुछ निकाल लिया गया है, कैल्शियम निकल गया है इसके अंदर से, जो जो उसके अंदर गुण होते हैं, तो इसलिए जब हम उसका सेवन करते हैं तो खाली मिठास तो देता है बट वो सारी चीज़ें नहीं दे पाता जो उसके अंदर होती हैं। तो कहने का मतलब ये था कि नटशेल में अगर हम लोग उस नेचुरोपैथी को समझने का प्रयास करें, वो ये है कि जो गंदगी शरीर के अंदर वो निकलनी चाहिए साथ साथ। तो वो कहते हैं कि आप भोजन ऐसा करिए, सीजनल फूड लीजिए, वेजिटेबल्स की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे संसार में 70% पानी है, बॉडी में 70% पानी होता है, बाकी हड्डी मांस मज्जा इत्यादि, उसी तरह हमारे खाने में भी 70% पानी या लिक्विड वाली चीज़ें होनी चाहिए। तो सैलेड जैसे है और सब्जियां इत्यादि हैं थोड़ा ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, बट पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति जितना इन सब चीज़ों पर रहेगा हल्का रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, लेजीनेस ख़त्म हो जाएगी, और साथ ही साथ जो खा रहे हैं वो अपने अपने रास्तों से बाहर निकल जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि एक तो नई बीमारी नहीं बनेंगी, जो पुरानी है उसका क्या करें जो चली गई आगे पीछे। तो उसमें उन्होंने बताया कि बड़ी सारी चीज़ें, कई तरह के सूप बताए, सब्जियों के, घी के, वेजिटेबल्स, डाब पीना, डाब मतलब नारियल कोकोनट वाटर, उसके बारे में तो इतना बताया कि ये कैसा फूड या फ्रूट है जिसके अंदर किसी तरह का इंजेक्शन नहीं लगा, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का मिक्सचर नहीं है, मिक्स नहीं है, डाब जिसे बोलते नारियल पानी, तो वो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। और उन्होंने एक चीज़ बताई कि पेठा, अब हम में से किसी को है शुगर इत्यादि, तो अगर हम लोग पेठे का जूस पीते हैं, जिसको नहीं भी है, तो उन्होंने बताया था कि पेठे का जूस सबसे बड़ा फायदा करता है, हमारे शरीर से एक्स्ट्रा चर्बी जो है वो निकलना शुरू होती है। कोई मुझे कह रहा था मैं पतला हो गया, वैसे मैं 1 महीने से पी रहा हूँ, तो मुझे लगा कि हाँ मैं तोला मैंने अपने आप को, तो शायद 4 से 5 किलोमीटर कम हो गया। तो मैं कुछ कर नहीं रहा, ऐसा खा भी सब कुछ रहा हूँ, लेकिन शायद मुझे लगा उसका फर्क प्रभाव पड़ा है। तो जो अल्टीमेटली समझ पा रहे बात को कि हमें अपने शरीर के अंदर गंदगी नहीं रोक, तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप सब ये चीज़ें खाइए। तो अब हमें अगर स्वस्थ रहना है, एनर्जेटिक रहना है और सही सेवा करनी है, सही चेतना में करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग उस वाले कोर्स को 100% अपनाते हैं तो कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 100% में उनका क्या है, मान लो किसी को शुगर है या कई तरह की बीमारियां हैं, तो अगर कई तरह की बीमारियां हैं तो वो अगर एक शेड्यूल दिया था उन्होंने खाने पीने का, अगर वो फॉलो करने लगते हैं तो शायद वो बीमारियां 1-2 महीने में आपको अपने आप लगेगा, दवाइयां भी बंद हो गई और ख़त्म हो गई। तो क्या थी, उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को चाहिए कि सुबह वो कच्चे पेठे का 200 से 250 ग्राम जूस पिए। जी क्या करेगा, ये जो पुरानी बीमारियां भी हैं ना, जो जहाँ जहाँ तक डेवलप हो चुकी हैं, उसको भी निकालना शुरू करेगा, और जो करंट प्रॉब्लम्स अटकती हैं हमारी वो भी सब ठीक करेगा। तो बड़ा इफेक्टिव है ये, हमने पिया तो एक तो ये करना चाहिए। और सुबह जब पिए इसको तो उसके 2-3 घंटे तक कुछ ना लें, क्योंकि इसमें अपने आप इतनी एनर्जी होती है कि आपको भूख भी नहीं लगेगी। ये उनके लिए बता रहे हैं, उनका 100% वाला कोर्स बता रहा हूँ मैं आपको, अगर कोई कर सके तो ये कर लें। फिर 9 बजे 10 बजे अगर भूख लगती है, नाश्ता करना कुछ है, तो उन्होंने बताया जो सीजनल सैलेड्स हैं, मूली, गाजर इत्यादि सीजनल चल रही, सबसे सस्ती चीज़, तो उसको कद्दूकस कर कर या टुकड़े काट कर खाए, और अच्छी मात्रा में खाए, पेट भर कर 500 ग्राम। उसमें उन्होंने चीज़ें बताई कि क्या क्या डाल सकते हैं, उसमें आप धनिया पुदीना की चटनी बनाकर डाल सकते हैं, देसी टमाटर यूज़ करना चाहिए, और नारियल बताया था, नारियल की गरी 50 ग्राम, 100 ग्राम, अगर एक ने खानी तो 50 ग्राम, दो ने खानी 100 ग्राम, तो कद्दूकस करके उसमें डाल सकते हैं। तो अगर हम लोग 500-600 ग्राम ये सलाद मॉर्निंग में ले लेते हैं, बिना नमक और बिना नींबू के, उन्होंने अच्छे एग्जाम्पल दिया कि नींबू डालने से क्या होता है, नमक डालने से वो सारा रस छोड़ देता है अपना। तो कई लोग कहते हैं फिर हम वो पानी पी लेंगे, तो उन्होंने बोला ये वैसे ही जैसे आदमी का खून निकाल दें और बाद में खून वापस डालने के लिए पी लो उसको, तो वो पूरा वो काम नहीं करेगा। तो हम लोग अगर उनकी, मैं 100% वाली बता रहा हूँ आपको, तो 9 बजे क्या करें, 9-10 बजे सैलेड ले लें, और 12-1 बजे अगर भूख लग रही है तो, जैसे जो ज़्यादा काम करना करता है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो लोग रोटी बोलते हैं चोकर के आटे की, आप लोगों को पता होगा चोकर क्या होगा। हाँ अच्छा, तो वो कहते हैं कि उससे आटे में आप घिया भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, मूली भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, पत्ते, हरीदार सब्जियां भी डाल सकते हैं, उसका आटा गूंद कर उसको बना लीजिए, देखने में भी अच्छी, खाने में अच्छी है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप एक रोटी खाते हैं तो सब्जी जो बनाएं वो रसीली सब्जी, सीजनल सब्जियां हों, और मटके के मतलब मिट्टी के बर्तन में, नहीं तो बहुत अच्छा है उबाल कर, नहीं तो स्टील के या लोहे के, तो एल्युमिनियम मना करते हैं, एल्युमिनियम के बारे में बताया कि जैसे कोई चाय पीता है एल्युमिनियम के बर्तन पे, तो कुछ समय के बाद दोबारा से एल्युमिनियम को तोलेगा तो कुछ ना कुछ परसेंटेज कम हो चुका होगा, और वो अलमुनियम अंदर जा चुका हो और वो कई प्रकार की बीमारियां, खतरनाक बीमारियां पैदा करता, कैंसर जैसे। तो सैलेड हो गया। उसके बाद अगर किसी को ज़्यादा भूख लगती है और ऐसा कुछ है, तो उन्होंने बताया कि फर्स्ट क्लास मील में तो उन्होंने ये बताया कि 12 बजे 1 बजे वो एक नारियल पी सकते हैं, डाब जिसे बोलते हैं, फिर 2-3 घंटे के लिए भूख नहीं लगेगी, शरीर को एनर्जी मिल जाएगी। 4 बजे करीब वो 2 या 3 चोकर की रोटियां खाए और साथ में तरीदार सीजनल सब्जियां खाए। एक चीज़ उन्होंने ये बोली कि उसको 1 सीटी 2 सीटी के बाद निकालने के बाद उसमें वो नहीं डालना चाहिए, नमक नहीं डालना चाहिए उबालते हुए। नमक का इस्तेमाल हड्डियों को गलाता है, तो उसमें बताया कि आप इसको बाहर निकाल के सेंधा नमक डाल सकते हैं बाद में, और हरी मिर्च डाल सकते हैं। तो उन्होंने जो तरीका बताया था, आप लोग में से कोई हो तो, उन्होंने बताया था कि उसमें उबाल कर उसके पानी को आप मिक्सी में डालिए और उसमें आप मतलब 2 टमाटर, देसी टमाटर नहीं तो 4 कर लो 6 कर लो, उसकी ग्रेवी बनाइए, गोला गरी डालिए उसमें, फिर नमक डाल दीजिए थोड़ा सा, वो उसको उसके साथ मिलाकर सब्जी के साथ खाई। तो ये वो तरीका बता रहे थे। अब हो सकता है कि ये बड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये तरीका जो 100% का जो मील का स्टैंडर्ड है इनका, ये उनके लिए है जिनको एकदम बीमारियाँ लगी हुई हैं और कहीं ना उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है, खूब दवाइयाँ खाते हैं, तो ये अगर वो इस शेड्यूल को फॉलो करते तो इमीजिएटली उनको रिलीफ मिल जाएगा और दवाइयाँ भी शायद छूट जाएँ। शाम को 4 बजे के बाद 5-7 बजे फिर भूख लगे तो फ्रूट्स खा सकते हैं, छाछ पी सकते हैं ऊपर से वो सब हटा के। तो उन्होंने बताया कि फ्रूट्स लें तो एक ही टाइप का एक बार लें। तो इस मील को कोई अगर पूरे दिन में फॉलो करता है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और एनर्जेटिक रहेगा और ये सब। लेकिन जैसे हम लोग का कहीं ना कहीं फीस, कहीं ना कहीं आए दिन घी और उस तरह की चीज़ें चलती हैं, और मेंटल तो वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि जब तक अच्छा खाएंगे नहीं तो लगेगा नहीं कुछ खाया है, पहले इतना कुछ छोड़ कर आए हुए हैं, अब जो मिल रहा है उसमें भी अब छुड़वा दोगे तो मुसीबत हो जाएगी। एक डॉक्टर के पास हम गए थे, वो ऐसे पेट को हाथ लगा के चेक करते थे, तो कहते पनीर खाया था, कहते नहीं पनीर नहीं खाया था, कहते नहीं 3 दिन पहले पनीर खाया था, कहते हाँ, कहते ये पड़ा देखो, मतलब पनीर जो हम खाते हैं वो 2-2, 3-3 दिन तक पेट में रहता है। राजमा या छोले ये इतने गरिष्ठ भोजन में गिने जाते हैं कि पचते नहीं है शरीर पेट में जाके, और हमारे यहाँ पर हम लोग तो राजमा चावल, छोले चावल और दही को जब उबाल दिया जाता है तो उसके अंदर सारे बैक्टीरिया तो मर चुके थे, शरीर के लिए फ़ायदे बनते वो उबाल कर, तो कड़ी चावल। तो उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी कोर्स में कि ये सब चीज़ें हम करते हैं ये हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत हेल्पफुल नहीं है, और इसी की वजह से गैसेस बनती हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, या गंद जो अंदर है वो अंदर ही रहता है और कहीं ना कहीं जाके समस्याएं पैदा करता है। तो अब ये हमको देखना है कि हमें क्या करना है। एक अगर हम लोग 100% मील नहीं ले सकते जैसा बताया शेड्यूल, तो 2 टाइम भोजन वाला कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से रोटी तो चोकर की चल सकती है सबके यहाँ, सब्जियाँ भी बन सकती हैं। फिर उन्होंने एक चीज़ और बोली कि सब्जी रोटी दाल और चावल का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। हमको तो लगता है 6-7 आइटम हो तो आदत पड़ चुकी है ना, सेट है माइंड। हम भी कहीं किसी के परिवार में जाते हैं जब प्रसाद के लिए लाते हैं, वहाँ भी 15-15, 10-10 आइटम बनती हैं। अब वो जो मशीनरी अंदर वो कन्फ्यूज रहती है कि इसको चबाऊँ, इसको पचाऊँ, इसको यहाँ भेजूँ, इसको वहाँ भेजूँ, कितनी तरह के आइटम अंदर चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें चावल भी खाने हैं तो चावल भी ब्राउन चावल कहते हैं, जैसे इसका ब्राउन राइस, थोड़े महंगे होते हैं बट वो, हाँ उन्होंने ये बताया कि इसको बनाने का तरीका है कि आपको 6-7 घंटे पहले इसको भिगाना चाहिए, मतलब आपको कल सुबह बनाने तो आप रात को भिगा के रखें। उससे क्या होता है कि वो मैंने खाए एक्चुअली, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। हमारे मंदिर में भक्त ने 2 किलो लेकर आए और उन्होंने उसको भिगाया। अगले दिन जब उसको बनाना था तो उन्होंने बोला चावल के साथ इवन दाल भी नहीं खानी चाहिए, कि दाल में हाईएस्ट प्रोटीन होता है। और वो हमारा शरीर अब एक उम्र के बाद 40 के बाद तो हर चीज़ को डाइजेस्ट करना है बड़ा मुश्किल, 35 के बाद मुश्किल कर देते हैं। गैसेस बनती हैं उसके अंदर से और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, तो खाने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे मेरे पिताजी हैं जगन्नाथपुरी दास, उम्र लगभग 70 या 72 साल। अब खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, बट वो बोतल लेके बैठते हैं, चावल दाल कंकड़ पत्थर हजम, वो उनका 72 में भी यही चल रहा है। अब ये नेचुरोपैथी उन पर काम नहीं करती, क्योंकि वो इतने एक्टिव हैं, हाइपर एक्टिव हैं वो। मुझे याद है जब कभी मैं मम्मी और पिताजी कहीं जाते थे, तो मान लो कि जब कहीं बस पकड़ने जा रहे हैं, यहाँ से 20-25 साल पहले ही बता रहे हैं, तो हम तीनों अलग होते थे। अलग मतलब पिताजी थे 25 मीटर आगे, मैं होता था बीच में और मेरी मदर होती थी पीछे। एक ही घर के लोग हैं, स्पीड तीनों की अलग है। और फिर पिताजी आगे जाके रुक जाते थे, फिर मैं पहुंचता था और हम मिलकर मम्मी को बोल रहे थे तुम इतना लेट आते हो यार वगैरह के। तो अगर हम गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं तो हमारा शरीर भी ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो तो चल जाएगा काम, क्योंकि शरीर ऊर्जा मांगता है, उसको एनर्जी चाहिए, वो फिर कहीं से भी लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ऑफिशियली बैठे हैं लाइक घर में जैसे काम नहीं ज़्यादा बैठेंगे बैठने का काम है, तो फिर वो हमारी मुसीबत पैदा कर देगा। वही भोजन एक व्यक्ति खा रहा है और ऐसे फूल रहा है, और वही भोजन एक व्यक्ति खा के वैसे वैसे ही है, कारण कि ये बहुत एक्टिव है और वो इतना एक्टिव नहीं है, तो फिर वो सारी बीमारियां पैदा करेगा। फिर आप जीवन भर दवा दारू करते रहिए, ठीक है कि नहीं? तो क्या बताया था हमने कि जो मील है जो अभी लिखवाई है वो तो उसके लिए है जो व्यक्ति बिल्कुल अपना शरीर और स्वास्थ्य को ठीक करना चाहता है, बीमारी खत्म करना चाहता है, वो मील। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए उन्होंने बताया, मैं हमें राइस बता रहा था, तो जो राइस ब्राउन राइस तो रात को भिगाए सुबह बनाए, और उसको भी कैसे बनाना, उसको भी उसमें भी वेजिटेबल्स डाल के पलाव टाइप 3-4 तरह की सब्जियां डाल दी चावल में, उसके अंदर इतना ग्रीसीपन था बिना तेल छोंक वगैरह के, उसमें हल्का सा नारियल डाल दिया और बनाया उसको, बहुत टेस्टी पलाव बना उसका। मतलब कहते हैं अगर चावल भी खाने तो किसके साथ खाएं, वेजिटेबल्स के साथ खाएं। तो लेकिन मैंने बताया ना जो एक्टिव ज्यादा है वो अगर दाल ले ले साथ में तो कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर हम लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, ऑफिस जाना है, सब कुछ करना है, तो हमारा फिर रूटीन में हो सकता है अगर 2 टाइम भूख लग रही है या एकदम नहीं कर सकते इतना हैवी फॉलो जो कि 100% वाला है, तो 60-70 भी आ जाए कि चलो हम 2 टाइम मील ले लेंगे, लेकिन उसमें चोकर की ही रोटियाँ होंगी दोनों टाइम, वो तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सब्जियाँ एक ही जगह 2 हों कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तरीदार हों, नमक बाद में सेंधा डाला हो बनने के बाद उबले के बाद, तो इस तरह करना चाहिए। और कभी दिन में वैसे कभी भूख लग जाए कि शेड्यूल से ना चल पाए तो सब्जियां वैसे उबाल के उसका रस पी लें बिना नमक डाले, और वो सब्जियां बाद में काम आ जाएंगी कुछ बनाने के लिए। तो इस कोर्स में ये देखा गया कि ये बड़ा हेल्पफुल है हेल्थ के लिए, जिनको ऑलरेडी बीमारियां चल रही हैं, जो वजन कम करना चाहते हैं, सबके लिए। तो साथ में अब हमारा जो लाइफ स्टाइल है, आज फीस्ट कल उनके यहाँ फीस्ट, पनीर भी चल रहा है, दाल मखनी भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो क्या करें? तो जो चीज़ हम कर सकते हैं, जैसे अगर हम लोगों को लगता है कि हाँ 100% वाला तो नहीं फॉलो कर सकते, 70 वाला भी मतलब लाइक 2 टाइम भोजन कर फॉलो करने की कोशिश करें वो भी नहीं हो सकता, तो 50 पे आते हैं। 50 में क्या कर सकते हैं? सुबह कच्चे पेठे का जूस रोज, एक टाइम अच्छी क्वांटिटी में सैलेड, और बाकी जो फिर जैसा चल रहा है आज उसको चला लें। लेकिन उसके साथ क्या करना पड़ेगा, एक चीज कि एक कॉटन की जो चादर होती है, ऐसे ऐसे कॉटन की चादर होती है, उसको 4 फोल्ड करके जब वो इतनी हो जाती है लंबाई में, उसको रोल कर पानी में भिगाएं जोर से निचोड़ें और नेवल के ऊपर से रखकर ऐसे लपेट दें दो रोल और बंद कर दें। उसके बाद भी काम कर सकते हैं, खाना ना खाएं, घर के सारे काम कर लिए, ऊपर से शर्ट डाल दी, गमछा बांध दिया, दिखे ना, तो इससे क्या होगा, उन्होंने ये बड़ा इफेक्टिव है कपड़े का, कि शरीर के अंदर जहाँ जहाँ जो जो गंदगियाँ अटकी हैं या जो खा रहे हैं हम उल्टा सीधा, छूट नहीं पा रहा, रुक नहीं पा रहे, सावधानी तो बरतनी है। ये हमें अब ये सब करते हुए मालूम पड़ जाएगा कि आज जो प्रॉब्लम मुझे किस लिए हुई है, ये जो समस्या हो रही है किस लिए हो रही है, क्योंकि कल शायद हमने ये किया था, परसों ये खाया था, उसकी वजह से हो रही, पता भी चल जाएगा। बट रोज़ अगर पट्टी बांध रहे हैं तो अगर इस तरह की चीज़ें भी अंदर जा रही हैं तो वो साथ के साथ क्लीनिंग होती रही। सर दर्द हो गया तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, या खतरनाक एलोपैथिक दवाई लेने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने बताया कॉटन की ही पट्टी हो गीली करके निचोड़ के सर पर एक बार लपेट। मुझे याद है कि मैं जब मेरे को खाना कहीं भी कुछ खाते थे तो स्टमक में गैसेस बनती थी और गैसेस कई बार सर दर्द का कारण बनती थी। और ये जो सर दर्द होता है गैस वाला सर दर्द, ये आप एनासिन खाकर, सेरोडन खाकर या डिस्पिन खाकर भी दूर नहीं होता है। तो मुझे याद है कि मैं बड़ा परेशान होता था, क्योंकि मुझे इसलिए डर लगता था मैं सेवाएं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं जल्दी से दो दो डिस्पिन खा लेता था। तो अभी मुझे क्या फ़ायदा हो गया इसका, कि मैंने जब कभी इस तरह खाने की भी कोशिश करी वो बंद कर दिया, क्योंकि जिस दिन भी सर दर्द होता है, जैसे एकादशी के टाइम मैंने शायद किसी से शेयर किया था कि दो एकादशी से पहले या तीन एकादशी से पहले, जो तीन एकादशी आई थी उन तीन एकादशी में मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही थी, वॉमिटिंग हो रही थी मेरे को, कि मैं कुछ खाता नहीं था, प्रयास करता था निर्जल रखने का, नहीं होता था तो जल पी लेता था, जल के साथ फिर कुछ खा भी लेता था, लेकिन तब तक गैस बन चुकी होती थी, और उसके बाद फल या कुछ भी खाता था फिर शाम तक वॉमिट हो जाता था। एक बार हो गया मुझे लगा शायद कुछ, दूसरी बार भी हो गया, तीसरी बार भी हो गया, फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मैं किसी भी एकादशी में भूखा नहीं रहूँगा, गैस नहीं बनने दूंगा, मैं टाइम पर भोजन करूँगा, जो भी होता है, सेवाएँ हम पर हो रही थी। लेकिन जब मैंने ये सुना तो मैंने भी क्या किया, जैसे जल पे रखा या कुछ भी किया, तो जैसे लगता है कि हेडेक होने शुरू हो रही है, गैस बन रही है, तो मैं कपड़ा लेता हूँ, निचोड़ता हूँ और तुरंत सर पे बांध लेता हूँ, और 15-20 मिनट के बाद ही आराम मिल जाता है। मतलब दवाई भी खाने की जरूरत नहीं है और कुछ भी करने की जरूरत, तो मुझे पर्सनली फ़ायदा हुआ, तो मुझे लगा ये हेल्पफुल है सबके लिए। गले में भी कोई खराश जुकाम दर्द तो गले में भी कहते उस पट्टी को बांध ले करो। तो अगर हम लोगों का जीवन स्टाइल जैसा भी चल रहा है वैसा ही चल रहा है मान लीजिए, तो उसमें पट्टी तो रेगुलर करनी पड़े, और उसका फ़ायदा ये होगा। और जूस वाला जो हमने बताया, सैलेड का एक टाइम बताया, इसका ये फ़ायदा होगा कि जो एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल में जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो हमारे को नुकसान पैदा करने की कोशिश कर रहा है, वो साथ के साथ डिटॉक्सिफाइड होता जाएगा, निकलते रहेंगी चीज़ें, तो नई बीमारियां नहीं बनेंगी, प्लस जो पुरानी कहीं जो चल रही हैं वो पेठे के जूस से या डाब से उसको उसकी निकासी होनी धीरे धीरे होगी, एकदम नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। तो ये कुछ लोगों ने बोला था लास्ट टाइम भी कुछ बताइएगा, तो मैं इसलिए शुरू कर आज मैंने इसी चीज़ से करा था। और अच्छे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा फ़ायदा कि हम हल्के रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, और ज़्यादा सेवाएं सही ढंग से कर सकते हैं। तो भगवद गीता में बड़ी सुंदर बात बताई उन्होंने, एक चीज़ बताई थी कि तीन तरह की रसोई बताए थे, किसी को याद है, कि एक होती है भगवान की रसोई। वो भगवान की रसोई कैसी होती है, गोलो गुरु 17 चैप्टर से तीन श्लोक ने गाना खाने वाले भगवान की रसोई, मतलब जो सूर्य और चंद्रमा की तपिश से भूमि जल भूमि से निकल रही हैं सब्जियां, फल पक रहे हैं, तो ये भगवान की नेचर की रसोई, मतलब लाइक नेचर पका रही है उनकी, तो वो अगर वो एज इट इज खा लें तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। फिर बोला इंसान की रसोई, तो इंसान की रसोई बोलते हैं वो कि जो इन पकी चपकाई चीज़ों को हम लोग अपने टेस्ट के हिसाब से अपने तड़के मसाले घी तेल लगाकर जब उसको बनाते हैं तो हमारी रसोई बन जाती है इंसान की रसोई, उसमें फिर दिक्कतें शुरू होती हैं। और तीसरी शैतान की रसोई, उन्होंने बोला ये वो रसोई है जो दूसरे को मार काट कर पिक कर कर पुराना बासी पका सका सब हम खाते हैं, तो वो कहते हैं ये बहुत नुकसान करता है। तो मेरे ख्याल से हम लोग बीच वाली रसोई में है ना, इंसान की रसोई। तो अगर हम पहली रसोई पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। बीच वाली रसोई का मामला क्या है कि उसके साथ हमने बता दिया क्या करना है, साथ साथ में तीसरी रसोई तो हमने ऑलरेडी छोड़ी हुई है, तो ये बड़ा हेल्पफुल है हमारे लिए। तो एक बड़ी अच्छी उन्होंने श्लोक कोट किए थे भगवद गीता से, उन्होंने कहा कि यहाँ जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, सात्विक व्यक्ति हम जानते हैं मोड ऑफ गुडनेस में रहने वाले लोग, उनको कैसा होता है प्रिय, जो प्रिय होता है वो आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला होता है, तथा बल स्वास्थ्य सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। कौन सा भोजन? यही सब हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? हर व्यक्ति की इच्छा तो यही है कि मैं सुखी रहूं, स्वस्थ रहूं और संतुष्ट रहूं, शक्ति भी रहे, शुद्ध जीवन भी हो और आयु तो बड़ी हुई हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभुपाद के मूवमेंट में सेवा कर सकें। तो ये सात्विक प्रकार का फूल है। राजसिक अत्यधिक तिक्त गत रसम सॉरी खट्टे नमकीन गरम चटपटे या शुष्क शुष्कम सूखे बासी जैसे बोल सकते हैं। पिज्जा कितना खतरनाक होता है, जब पहली पहली बार आया मैं कि ये क्या कर दिया, ये लकड़ी क्यों लगी हुई नीचे, देखा वो ब्रेड थी तो बड़ी हार्ड थी वो तो, और जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय है। हम समझ पा रहे हैं ये कौन सी, ये जो भोजन की संख्या बताई हमने ये किसको प्रिय है? रजोगुणियों। ऐसे भोजन दुख शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। हमारे बड़े मंदिर में एक डिवोटी थे, मैं जब भी मैं उनसे बड़ा प्रभावित था, बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, मैं उनको प्रणाम करता कहते नहीं 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 ऐसे ऐसे करके मना कर देते थे, तो तबीयत खराब रहती थी। मैंने हालचाल पूछा चला गया, फिर एक महीने बाद आया फिर मैं प्रणाम नहीं 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 मैं क्या हो गया बीमार, फिर दो महीने बाद गया फिर प्रणाम नहीं नहीं मैं क्या हो गया, तो कोई ना कोई हमेशा बीमारी से ग्रस्त रहते थे। कहते भगवान की इच्छा है अब क्या कर सकते हैं और ये। फिर मैं उनसे मिला एक साल बाद, जब वो कहीं बॉम्बे में शिफ्ट हो गए तो फिर दोबारा मिले, फिर मैंने उनसे बात करी प्रणाम किया, उन्होंने भी किया, मैं कहें तो मैंने कहा कैसे भी, कहते तबीयत ठीक है बहुत अच्छी है। मैंने कहा पहले तो बहुत बीमार रहते थे, कहते थे मेरे को लगता था कि सब कर्मों का है, भगवान दे रहे हैं टेस्ट कर रहे हैं। कहते बाद में पता चला ये मेरे ही अनर्थ थे, मेरी लेजीनेस थी कि मैं योगासन नहीं कर रहा था, मैं ढंग से खा नहीं रहा था, सही समय पर नहीं खा रहा था, तो जो मेरी 100% बीमारी थी 80% मेरी नेग्लिजेंस की वजह से थी। समझ पा रहे बात को? गलत खाना, गलत समय पे खाना है ना, और भूख ना रहते हुए खाना, तो और फिर रजोगुणी आहार करना, ये जो तीखे उष्ण शीक्ष्ण क्या क्या बोला है, खट्टे नमकीन गरम चटपटे है ना, जलन उत्पन्न करने वाले, तो ये रजोगुणी लोगों को प्रिय हैं। हाँ हम रजोगुणी हैं, हमें पसंद है ये सब, इसलिए रजोगुण जब वृद्धि होती है शरीर में तो रजोगुण क्या पैदा करता है, दुख शोक और रोग उत्पन्न करता है। और रजोगुण में रहने वाला व्यक्ति हमेशा बहुत एग्रेसिव रहता है, दूसरों में दोष देखना है, एक्टिव तो बहुत रहता है लेकिन डिस्टर्ब रहता है, हमेशा दुखी भी रहेगा शोक में भी रहेगा। ये तो रिजल्ट दिए सीधा भगवान ने, हम जानते हैं। अर्जुन ने पूछा कि मैं पाप नहीं करना चाहता बट फिर भी मुझसे कोई फोर्स है जो पाप करवा रही है, तो कृष्ण ने क्या कहा, रजोगुण सद्मोह, ये रजोगुण से उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो अनलिमिटेड डिजायर्स, ये हर समय तड़पनपन डिस्टर्बेंसेस रहती हैं हृदय में, आकांक्षाएं रहती हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं पूरी नहीं होती, दुख होता है, डिस्टर्ब होते हैं, परेशान रहते हैं, तो ये रजोगुण। तो रजोगुणी व्यक्ति इन सब चीजों से ग्रस्त रहता है, क्योंकि उसका भोजन ऐसा है, भोजन ऐसा होने की वजह से उसके अंदर रजोगुण उत्पन्न हो रहा है, और वो रजोगुण उसे दूसरे रजोगुणियों से मित्रता कराता है। तुझे ये फिल्म पसंद थी? हाँ, मुझे भी ये फिल्म पसंद, बहुत अच्छी, दोस्त बन गए। तो असत संग की तरफ वो आकर्षित होता है, लोभ बढ़ता है उसके अंदर, लालच बढ़ता है, वो और आगे बढ़ना चाहता है, फिर वो आगे बढ़ने के लिए उल्टे सीधे काम भी करता है, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए वो दो नंबर का काम भी करेगा। तो ये रजोगुण की वजह से, तो रजोगुण हमारी भक्ति के लिए क्या है, बहुत बड़ी बाधा है। तो अभी जैसे मैंने बोला कि ठीक है, अगर हम लोग वो नहीं कर सकते तो जैसा चल रहा वैसे चलता रहे, तो ये सांत्वना देने के लिए था। वास्तव में तो अगर हम लोग रजोगुण वाला फूड ले रहे हैं, अधिक तीखे चटपटे, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर रजोगुण की वृद्धि करेगा ही करेगा। जीवन का लक्ष्य पेट साफ करना नहीं है, मन साफ करना है क्या? हाँ, अगर रजोगुण अधिक रहेगा तो मन साफ नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर हमेशा विकार रहेंगे, क्योंकि विकार रहेंगे, इच्छाएं रहेंगी, और कहीं ना कहीं वो अपने लाभ के लिए, अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए सांसारिक भोगों में लगेगा, वो कर्म बनाएगा, और कर्म से हम लोगों को फिर से पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम के चक्कर में आना पड़ेगा। और तीसरा जो है वो क्या बताते हैं, तामसिक जिसे बोलते हैं, तो उसमें बताते हैं खाने के 3 घंटे से पहले पकाया गया, स्वादहीन वियोजित एवं सड़ा हुआ जूठा आस्पर्शीय वस्तुओं को जो ये तामसिक लोगों को पसंद है। तो खैर, तामसिक में हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए फ्रेश बनाएं, फ्रेश खाएं, तो अर्थात बासी बनाने। जैसे एक व्यक्ति था, एक बार वो मैकडोनल्ड गया, बर्गर लिया और घर पर आया, तो उसने उसको जेब में रखा हुआ था, घर में लड़ाई हो गई किसी बात, कहीं जल्दी जाना पड़ गया उसको, तो उसने कपड़े वपड़े बदले, पैंट वैसी टांगी और चला गया। तो कहते कुछ महीने के बाद जब वो वापस आया और अचानक पैंट में हाथ लगाया कुछ है, तो निकाला तो बर्गर था, और बर्गर जैसे हमारी भगवद गीता एज इट इज है, वो बर्गर भी एज इट इज ही था। मतलब उस बर्गर को कोई कीड़ा नहीं लगा, कोई बैक्टीरिया नहीं लगा, कोई सड़ा नहीं, कोई बदबू नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर कुछ है ही नहीं, वो तो वाइट मैदा उसका बना हुआ चीज है, वो तो उसको तो जीव जंतु भी नहीं खाते, बैक्टीरिया भी इसको खा के राजी नहीं, और उसे हम खाते हैं यहां चिपकाने के लिए आंतों में, ये फास्ट फूड। लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमारे पास पैसा है? हम भी जाते हैं मैकडोनल्ड, तो हम भी जाते हैं, लोग दिखाने के लिए खाते हैं, बच्चों को लेके जा रहे हैं, उनकी खुशियां हैं, अब उनको भी ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको फंसना पड़ता है। तो मैं बता रहा था कि ये तामसिक भोजन है, 3 घंटे पहले नहीं बना, पता नहीं 30 साल पहले बना के रखा है, 3 महीने पहले का बना हुआ है, बट बचा हुआ है, उसको सीटें भी खा के राजी नहीं। आप देखेंगे पहले की ऐसी चीजें होती थी, तुरंत उसमें बैक्टीरिया लग जाते थे, फफूंदी लग जाती थी ना, उसमें नहीं लगती थी, उसमें नहीं लगी। तो वही पिज्जा हम खाते हैं मायापुर में, तो हमको जब पे जाते हैं तो वहाँ तो आटे का बेस बनाकर खिलाते हैं भक्त, लेकिन हमें यहाँ तो मार्केट से ले आओ जल्दी पिज्जा बनाएंगे, तुरंत वहीं से बेस लाते हैं, उसके पास पता नहीं कब से पड़ा है। तो इस प्रकार हम लोग नुकसान करते हैं। तो यहाँ जो 3 प्रकार का जो फूड बता रहे हैं भगवान कृष्ण, तामसिक राजसिक और सात्विक, तो हमें सतोगुण में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? राजसिक भोजन कर करके तो चेतना राजसिक हो जाएगी, और सात्विक भोजन से सात्विक चेतना होगी, पीसफुल शांत, काम एंड पीस, हृदय में इच्छाएं भी वैसी नहीं रहेंगी, क्योंकि रजोगुण चाहिए इच्छाओं को खंगालने के लिए। सात्विक व्यक्ति कहता है ठीक है शांत। सतोगुण में व्यक्ति ज्ञान में रहता है, और डिस्क्रिमिनेट कर सकता है क्या सही है मेरे लिए और क्या गलत है, किसका सेवन करना चाहिए किसका नहीं करना चाहिए, सही टाइम सोने का क्या है, सही टाइम उठने का क्या है, किस प्रकार मुझे सीनियर से बात करनी, किस प्रकार मुझे जूनियर से बात करनी, किस प्रकार मुझे टॉलरेंस का इस्तेमाल करना है, किस प्रकार दूसरों को मान देना है, जो हम सब कुछ कर रहे हैं, ये सब बड़ी हेल्पफुल है इन सब चीज़ों के लिए। इसलिए आखिरी समय में जब शीला प्रभुपाद जी दसम स्कंद के 14वें अध्याय का भी डिक्टेशन कर रहे थे अंतिम समय में, तो भी प्रभुपाद जी उस समय सतोगुण की बात कर रहे हैं। अगर आप वीडियो में देखेंगे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि सारे भक्त लोग तुरंत सतोगुण तक उठें, क्योंकि सतोगुण में उठने से व्यक्ति चीजों को ठीक प्रकार से देख पाता है। एक जैसे अभी ड्रामा किया था ना आप लोगों ने, आप तो आपको सारी चीज याद होंगे, आप खैर रजोगुण में हो, सतोगुण वाला कौन है आप? हाँ याद है कुछ या डायलॉग? तो सात्विक वृत्ति होना प्रभुपाद जी भी अंतिम समय में बोल रहे हैं, क्योंकि सतोगुण पर आकर व्यक्ति सही प्रकार से देख पाता है क्या सही है क्या सुखदायक है। और हमें सतोगुण से भी अटैच नहीं होना, इस गुण में पहुंचने का फायदा ये है, क्योंकि हम तो कृष्ण भावनावृत के आंदोलन से जुड़े हुए हैं, हम कोई शुष्क वैराग्य नहीं है कि बस प्रकृति को देखकर हम चलेगा क्या सुंदर एरिया यहाँ तो ध्यान लगाने में जाए, नहीं नहीं हम लोग तो हर समय कहाँ जुड़े हुए पंचांग भक्ति का पालन कर रहे हैं, डिवोशन से श्रवणम कीर्तनम इत्यादि। तो ये सतोगुण तक पहुंचना हमारे लिए हेल्पफुल है भक्ति के लिए, सतोगुण से अटैच नहीं होना लेकिन सतोगुण से ऊपर उठना है। लेकिन भक्त लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे कैंटो में लिखा है कि भक्ति तीन प्रकार से करते हैं, तामसिक भक्त भी हैं, राजसिक भी हैं और सात्विक भी हैं। तो अलग अलग इच्छाओं के साथ करने का मतलब वैसे जैसे दान तीन प्रकार का वैसे ये भी। तो जब आउट ऑफ ड्यूटी किया जाता है सारी चीज़ें तो उसको सात्विक व्यक्ति करें। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को युद्ध के क्षेत्र में ये तीन प्रकार का भोजन बता रहे हैं, सात्विक राजसिक तामसिक। तो हमें सतोगुण तक उठना चाहिए, क्यों? क्योंकि सतोगुण का जो है बता रहे हैं कि जो भोजन आयु बढ़ाने वाला जीवन शुद्ध वो सब चीज़ें हमें सेवन करनी चाहिए, जो अधिक रसीले रसीले और साफ सुथरे कौन से होते हैं, ये वेजिटेबल्स और ये फ्रूट्स, तो इन पर ज़्यादा डिपेंड रहना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान ने जो बोला युक्त आहार विहार से, युक्त आहार होना चाहिए विहार होना चाहिए। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगा एतान वेगान विषेहित धीरा है ना सर्वामपि पृथ्वीम सशिष्यात्, कि वो पूरी पृथ्वी पर शिष्य बनाने लायक बन जाता है, मतलब गुरु के स्तर पर पहुंच जाता है कौन, जो छह वेगों को कंट्रोल करता है। तो वाचु वेगम रजोगुणी व्यक्ति बिना सोचे बोलता है, बोल देता है बस, उसकी बातचीत उसका तरीका उसके अंदर कठोरता सब नजर आएगी। लेकिन सात्विक व्यक्ति अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है, तो मतलब सतोगुण में आने का फायदा क्या है कि वाचो वेगम भी हमारा वेग जो है कंट्रोल होगा, मनसा वेगम, अब मन का भी एक वेग है, तो रजोगुण में तो मन हमेशा डिमांड्स करता है, हर समय विचलित रहता है, डिस्टर्ब रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है, कुछ ना कुछ चिंतन करता रहता है। लेकिन सात्विक वृत्ति वाले व्यक्ति का मन इस प्रकार इच्छाएं नहीं देता उसको, वो कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेट करता है मेरे लिए सही क्या है मेरे लिए गलत क्या है। जो चीज़ मुझे अभी सही लग रही है शुरू में आनंद दे रही है लेकिन बाद में दुख देगी, इसलिए मैं इसको ना लूँ। अभी ये मुझे तपस्या लग रही है लेकिन इसका वेग का कंट्रोल करने से मेरे को अंतिम समय अच्छा होगा, इसलिए वो डिस्क्रिमिनेट करके उस प्रकार कार्य करता है। क्रोध हम सब जानते हैं, तामसिक व्यक्ति सर फोड़ता है, राजसिक व्यक्ति बहस करता है और सात्विक व्यक्ति शांत रहता है। तो इसका मतलब कि सतोगुण में उठने का फायदा है कि आप हम सात्विक वृत्ति में रहकर कितने ऑफेंसेस अवॉइड कर सकते हैं। जिसका मन डिस्टर्ब है क्रोध में रहता है वो कितने ऑफेंस करेगा, भक्ति में तो वो डिस्टर्ब ही करेगा लोगों को, खुद भी डिस्टर्ब रहेगा। फिर जीवा बेगम, तामसिक व्यक्ति का भोजन बता दिया, राजसिक का बता दिया और सात्विक का बता दिया, तो कौन सा भोजन लेना चाहिए, जीवा को देना चाहिए, ये समझ आ रहा है हम। और उदर उपस्थ वेगम, जनेन्द्रियां और जो हमारा उदर है इनके वेगों को भी रोकना। तो जो व्यक्ति सतोगुण में अधिक होगा वो आसानी से इन चीजों को कंट्रोल कर सकता है। एक सात्विक वृत्ति का व्यक्ति बहुत आसानी से इन छह वेगों पर कंट्रोल कर सकता है। तो शास्त्रों में इन वेगों के विषय में इसलिए चर्चा दी है, या सतोगुण तक उठने की बात इसलिए की गई है, या भगवान युक्त आहार विहार की बात इसलिए कर रहे हैं, ताकि एक भक्त ठीक प्रकार से स्वास्थ्य को ठीक रखते हुए साधना कर सके, दूसरे आश्रमों से, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल अलग है, वहाँ पर कोई साधना नहीं है, उन लोगों के लिए कोई पर्सनल इस प्रकार की ड्यूटीज़ नहीं है। बट हमारे पास क्या है कि अपनी खुद की पर्सनल साधना हर व्यक्ति की मिनिमम 3 घंटे की तो है, रीडिंग और चैंटिंग को मिलाकर, उसके बाद उसका अपना काम धंधा। तो इसलिए सतोगुण तक उठना जरूरी है, और हम अगर सतोगुण तक उठते हैं तो इसमें हमारा लाभ है, क्योंकि हम लोगों को शक्ति प्राप्त होगी। जो दृढ़ता होती है ना, वो सतोगुण व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे ढंग से आती है, क्योंकि पहले अच्छे ढंग से वो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है हर चीज़ को। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हुआ कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, इसका क्या लाभ है और क्या नुकसान है। तो सतोगुणी में व्यक्ति में हर व्यक्ति कर्म करने से पहले सोचता है कि मैं जो ये करने वाला हूँ, या जो बोलने वाला हूँ, जो क्रोध करने वाला हूँ, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, या जो मैं ये खाने वाला हूँ, या जो मैं ये गलत काम करने वाला हूँ, उसका क्या नुकसान होने वाला है। तो सात्विक वृत्ति वाला व्यक्ति डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, और फिर उसके प्रभाव को देखकर, उससे होने वाले नुकसान को देखकर वो अपने को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जिनके अंदर रजोगुण अधिक है, वो लोग तुरंत मन पे आते कोई भी चीज़, कोई भी वेग, वो तुरंत देखते हैं लाभ है ना, कर डालो। वो ये नहीं देखते अभी लाभ है, बाद में नुकसान है। जैसे मीठा खूब खाते हैं, या कोई भी भोजन हमारे सामने आया, हम तुरंत खाने का प्रयास करते हैं उसको, चलो जी भगवान कह रहे सब चलता है, खाओ प्रभु, कोई दिक्कत नहीं होता ना कई बार। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे शरीर के लिए कितनी सही है चीज़। कहीं भी कुछ भी मिले, 56 भोग भगवान खा सकते हैं, भगवान डाइजेस्ट करते हैं, आप उसमें से अपनी एक चीज़ ले लीजिए। ये थोड़ी कि 56 की 56 ही खा के जानी है, अंदर वाली सिस्टम भी हड़ताल पे चला जाएगा, भाई क्या क्या भेज रहे हो, मैं कभी ये भेजते चबाने के लिए, पचाने के लिए, कभी ये, तो इतनी चीज़ें इधर भेजता हूँ इधर, तो इसलिए हमारे साथ नुकसान होती है चीज़। जिस प्रकार भगवत गीता पढ़कर जो हमें थोड़ा ज्ञान आता है, तो हमें मालूम है शास्त्र कह रहे हैं कि किनका संग करना है, किनका नहीं करना, किसकी इंस्ट्रक्शन माननी है, कैसी इंस्ट्रक्शन माननी, किसकी नहीं माननी, जो हमारे लिए भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहा है, जो सत का संग कर रहा है, ऐसे भक्तों का संग करना है। जो असत का संग कर रहा है, जिसकी मेंटालिटी गलत है, जो रजोगुण में अधिक है, जिसकी इंटेंशन ठीक नहीं है, ऐसे लोगों का संग हमें भक्ति में दूर करता है। इसलिए हम बचते हैं, अपने भक्ति लता बीज को बचाते हैं। उसी प्रकार शरीर के लिए भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको करना चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी जिन्हें नहीं करना चाहिए। तो आज प्रयास किया कि ये बताने का कि क्या हमें लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, किस प्रकार सतोगुण में उठें, ताकि हमारी डिवोशनल लाइफ में ये हेल्पफुल हो। ठीक है, हरे कृष्ण। आपको प्रश्न या जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, हाँ, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, कहने के अंदर तो दूषित है, प्रदूषित है ही, लेकिन फिर भी बताते हैं जो सबसे सस्ती है, जो सीजनल है उसको ही लें, जो स्टोर्ड हैं फ्रिजेस में रखी हुई हैं या कुछ है उसको ना लें। फिर भी कुछ भी सब्जियां यदि हम कुछ बनाना चाहें, सैलड बनाना चाहें, तो कोशिश ये करें उसको 2-3 घंटा पहले पानी में रखें। पानी में काफ़ी देर रखने से बताते हैं कि उसकी चीज़ें हट जाती हैं। पहले ही धो लें उसको, और छिलका के समेत बनाएं, और काटने के बाद उसको नहीं धोना चाहिए, ताकि उसके विटामिन उसके साथ ही हमें मिल जाए। क्या चीज? हाँ हाँ बिल्कुल, इसलिए हमने बताया कि जो ये पेस्टिसाइड डल रही है चीज़ों में, इंजेक्शन लगा के कर रहे हैं काम, केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं, ये कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं। इसलिए आपको जो बताया मॉर्निंग में, जो पेठे का जो जूस है वो नियमित रूप से आप पीते रहेंगे, तो शरीर में होने वाली इन सब चीज़ों की वजह से जो समस्याएं बढ़ने वाली हैं, बढ़ती हैं, वो उसको निकालना शुरू करेगा। एक बात, दूसरा सैलेड की क्वांटिटी, और तीसरा पट्टी वाला काम, ये अगर हम करते रहेंगे तो इन सब गड़बड़ खाने से, इन सब चीज़ों के कई बार खा लिया जाता है कई जगह पे, हम लोग 100% फॉलो करते हैं, जैसे घरों में लोग रह रहे हैं, जैसे मंदिर में, हम मंदिर में इतने सारे डिवोटीज रहते हैं, सबके लिए अलग अलग नहीं बन सकता है, तो हमें वही खाना पड़ता है जो बनता है। आप लोगों के घर में तो खुद की किचन है, खुद ही आप मालिक हो, आपको मालूम है सेंधा नमक डालना डाल दिया, आपको मालूम है चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करना कर लिया, आपको मालूम है कि हम लोग चावल कर लिया आपने, तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत है कि हम लोग सबको पहले कन्विंस करना है हाँ करना ना करना है, क्योंकि तो हम लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है, आखिर घर में मुश्किल नहीं हो सकती आप लोगों को, पता भी नहीं चलेगा, बिना बताए शुरू करोगे सबको पता चल जाएगा। जैसे मैंने बताया वो जितने बढ़िया चावल बनते हैं गीले गीले, मज़ा आता खाने ब्राउन चावल। बीस पच्चीस मिनट बात करनी चाहिए, तो प्रभु जी बता रहे हैं इन्होंने बांधी है तो इससे इनको गैस नहीं हो रही एक तो, और मोशन भी जल्दी हो रहा था। गुड, गोलियाँ तो जिनको भी बीपी का प्रॉब्लम है वो दो तीन चार दिन भी अगर इसको फॉलो करते हैं तो अपने भी ख़त्म हो जाएंगे अब 5-10 दिन बाद। और कुछ है जी? हाँ वो चेक कराते रहिएगा जब तक कि आप इसको रूटीन से ले रहे हैं, जो मील आपको बताइए तो आपको अपने भी लगेगा कि उसको खाने से बढ़ रही है कम हो रही है, फिर छोड़ भी दोगे तो पता नहीं चलेगा, नॉर्मल हो जाए, चेक कराते रहे, नॉर्मल हो जाए फिर गोलियाँ क्यों खानी है, हम डॉक्टर वाला वो काम कर रहा हूँ। यस हाँ जी, ठंडा पानी नहीं, मतलब नॉर्मल पानी नहीं चाहूँगा। तो आप लोगों को ये जो चीज़ें बताई हैं आज स्वास्थ्य से रिलेटेड, आशा करते हैं कि आप इसको फॉलो करेंगे, और इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग स्वस्थ शरीर से अच्छी साधना करें, जल्दी उठें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें, और अपनी साधना अच्छी करें और सेवाओं के लिए तत्पर रहें। हम लोग जो इस प्रकार के जो कोर्सेज देते हैं या कुछ भी करते हैं, हमारे को लोगों का शरीर अच्छा कर कर, वो लोग भी सतोगुण में हैं, वो भी कोर्सेज देते हैं, बड़ी खुशी होती है उनको जब वो दूसरे को बीमारी से ठीक कर देते हैं, और जो बीमारी से ठीक हो जाता है वो उसको भगवान मानता है, डॉक्टर को या उस वक्ता को, वक्ता भी खुश है क्योंकि वो कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, पेशेंट भी खुश है क्योंकि उसको अच्छा हो गया। लेकिन अच्छा शरीर दे देना, अच्छे स्वास्थ्य से पाप करना, रजोगुनी बने रहना, दूसरों को दुख देना, तो जब व्यक्ति ऐसा पाप करेगा तो उसको तो नुकसान नहीं है, जिसने ठीक किया उसको भी नुकसान है ना। तो इसलिए हम लोग यही आशा करते हैं आप लोगों से भी कि हम लोग क्या करें, अगर अच्छा स्वास्थ्य रखने का प्रयास करें तो उद्देश्य यही होना चाहिए कि मन वाणी और कर्म से भगवान की सेवा अच्छी से अच्छी, नहीं तो अच्छे स्वास्थ्य का कोई मतलब नहीं है, जीवो वा मरो वा, है ना, था ना चार चार चीज़ें बोली थी, अगर कोई पापी व्यक्ति है तो उसको जल्दी मर जाना चाहिए, उसको अच्छा स्वास्थ्य देने की भी जरूरत नहीं है, ताकि वो जल्दी मरे, उसके पाप खत्म हो, है ना, जल्दी यातना भुगत के कहीं और जाए। तो इस तरह हम लोगों का है उद्देश्य कि अगर अच्छा स्वास्थ्य या लंबा स्वास्थ्य भी हो उसकी कामना भी करें, तो उद्देश्य ये होना चाहिए कि उससे हम लोग मन वाणी क्रम से गुरु और गौरांग की अच्छी सेवा कर सकें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णविंद की निताय गौर प्रमाण। ये थोड़ी
तुलसी सबके साथ जरूर करनी।
बद्रीनाथ का प्रसाद है सबके लिए, तो तुलसी भगवान के चरणों की और थोड़ा सा मुड़ी भी थोड़ा थोड़ा जरूर। हरे कृष्ण।